दिन के 3:30 बज चुके हैं। गोमठ सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण की क्लास का समय हो चुका है और आप सबको अब गोमठ सार जीवकांड पढ़ने के लिए तैयारी कर लेना है और ध्यान रखना है। जो परीक्षा आपकी 28 फरवरी को होने वाली थी, बीच में एक लंबा गैप कारणवश पड़ जाने से अब ये परीक्षा आपकी 5 मार्च को होने जा रही है। तो 5 मार्च तक आपको 27 नंबर की गाथा से लेकर और 87 नंबर की 87 तक ध्यान में रखना है, याद करना है और उसकी परीक्षा देना है वेद मार्गणा तक। अभी हम योग मार्गणा में चल रहे हैं तो इसमें चलिए शुरू करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमी चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य के 20 प्ररूपणाओं का कथन करते हुए आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने हम सबको ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप संसार में अशुद्ध अवस्था में रहते हुए अपनी जीवात्मा को किस प्रकार से शुद्ध बना सकते हैं, उसके लिए इन प्ररूपणाओं के माध्यम से जाने कि किस प्रकार से जीव की परिणति चल रही है, कौन सी मार्गणा में हम सब हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत गुण जीवा पज्जति पाणा सन्ना या मग्गणाओ या ओगो विय कमसो विषम तु परवणा भणिदा। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, इन 5 प्ररूपणाओं का कथन किया। पुनः 14 मार्गणाओं को 14 भेदों के रूप में सम्मिलित किया तो 14 और 5 19 हुई और उवो गोविय कमसो उपयोग मार्गणा अंत में तब 20 प्ररूपणा हो गई। तो मार्गणाओं के अंदर हम योग मार्गणा में चल रहे हैं अर्थात 9वीं प्ररूपणा है। प्ररूपणा की गिनती में हम 9वीं प्ररूपणा पर आ गए हैं और मार्गणा की अपेक्षा से गई इंद्रिय सुकाये जोगे गति मार्गणा, इंद्री मार्गणा, काय मार्गणा हो गई। अब योग मार्गणा में 4थी मार्गणा में प्रवेश किया है आपने। 4थी इस योग मार्गणा में आपने योग के अर्थ को जाना, योग के कितने भेद होते हैं इस बात को जाना और 4 मनोयोग, 4 वचन योग, इनकी स्थिति को जाना। उसके साथ में केवली भगवान के क्षायिक भाव होते हुए भी द्रव्य और भाव मन होता है इस बात के साथ में ये विशेष जानना है कि केवली भगवान के सत्य मनोयोग, अनुभय मनोयोग, सत्य वचन योग, अनुभय वचन योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कारमान काय योग, ऐसे ही 7 योग होते हैं। तो ये तो केवली भगवान के योग बताए और संसारी जीव हम और आप जो हैं, एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के सभी जीवों के यथासंभव योग होते हैं और 14वें गुण स्थान में अयोगी बन जाते हैं, योग रहित अवस्था प्रकट हो जाती है। तो मनोयोग और वचन योग के भेदों को आप जान चुके हैं। आज हम आते हैं अब काय योग पर। गाथा नंबर 78 है और पेज नंबर है 85। तो गाथा को पढ़ते हैं। पुरु महदुदारुरालम ए अट्ठो संविजान तम हिभवम ओरालियम तमुच्चई ओरालिय काय जो गोसो
ओरालिय काय जो गोसो।
सामूहिक गाथा पढ़िए। पुरु महदुदारुरालम
ए अट्ठो संविजान तम हिभवम ओरालियकायजो गोसो
पुरु महादुदार मुराली मेखार्था संविजानी तस्मिन् भवम् औरालिकं तदुच्यते औरालिक काय योगः सः। औदारिक को औरालिक भी कहा है। तो पुरु महत उदार उराल ये सब एक ही पर्यायवाची नाम है, एक शब्द के ही और स्थूल अर्थ के वाचक हैं। माने काय योग का मतलब यह है शरीर का योग। शरीर स्थूल ही होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन दिखता है, इसलिए वह स्थूल कहा गया। और उदार में जो हो उसको कहते हैं औदारिक, तथा उदार में होने वाला जो काय योग है उसको कहते हैं औदारिक काय योग। तो औदारिक काय योग ये बताया गया, ये निरुक्ति अर्थ है ऐसा जानना चाहिए। यानी काय योग जिस जिस काय शरीर नाम कर्म का उदय होता है उस जन्य शरीर की प्राप्ति होती है और वह काय योग कहलाते हैं। तो आपको जानना ये है कि काय योग के सात भेद हैं। कितने भेद हैं? सात भेद हैं। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। ये सात भेद हो गए काय योग के। इनके विशेष बातों को अगली गाथाओं के माध्यम से बताते हैं। तो चार मन के हो गए, चार वचन के हो गए और सात काय योग हो गए, तो आठ और सात मिलकर के 15 हो गए। अब योग के भेद जब पूछे जाए तो आप कितने बताएंगे? 15। मनोयोग के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? सत्य असत्य उभय और अनुभय। और वचन योग के कितने भेद हैं? सत्य असत्य उभय और अनुभय, ये 8 हो गए। और काय योग के 7 जो इस गाथा में बताए गए। अब इनको अलग अलग नहीं बताया, इसमें आपको जानना है कि औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, सब लोग बोलिए, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। ये अपने अपने जन्म के अनुसार गति के अनुसार उस काय को आधार बना करके जीव उन शरीरों में रहता है और वही उनका काय योग होता है। तो ये आपको बताया गया। अब आगे बताते हैं, जैसे ये बता दिया कि जो उदार में रहते हैं औदारिक और उदार में होने वाला जो योग है वो औदारिक काय योग कहलाता है। यानी कि मनुष्य के और तिर्यंचों के कौन सा काय योग होता है? औदारिक काय योग। और देव और नारकियों के होता है वैक्रियक काय योग। वही मिश्र काय योग भी ले लो, वो कब होता है वो एक अलग बात है। मनुष्य और तिर्यंचों के औदारिक और औदारिक मिश्र काय योग, और देव और नारकियों के वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग और कारमान काय योग सबके साथ होता है। अब यहाँ पर बताते हैं आहारक काय योग क्या है।
आहारस्सुदयेनया पमत्त विरदस्सहोदि आहारम्
असंजम परिहरणट्ठम् संदेह विनाशनम् ठम च। सामूहिक गाथा पढ़िए।
आहारस्सुदयेनया पमत्त विरदस्सहोदि आहारम् असंजम परिहरणट्ठम् संदेह विनाशनट्ठम् च।
आहारस्योदयेन च प्रमत्त विरतस्य भवति आहारकम् असंयम परिहरणार्थम् संदेह विनाशनार्थम् च। इसका अर्थ जानिएगा। सबसे पहले तो गुण स्थान में आप जान चुके हैं। प्रमत्त विरत का मतलब कौन सा गुण स्थान का नाम है? छठे गुण स्थान का। यानी छठे गुण स्थान वर्ती प्रमत्त विरत मुनि के आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग होता है। कब होता है? जब आहारक का योग नारक नाम कर्म का उदय आता है। तो ये इसको आपको ये जानना है कि जैसे औदारिक शरीर या वैक्रियक शरीर जन्म से प्राप्त होता है, जैसे मनुष्यों को तिरंचों को जन्म से औदारिक शरीर प्राप्त हुआ है, नारकियों को देवताओं को वैक्रियक शरीर जन्म से प्राप्त हुआ है, ऐसे आहारक शरीर किसी को जन्म से प्राप्त नहीं होता। ये आहारक शरीर केवल मनुष्यों के विशेष रिद्धि के समय ही प्रकट होता है। तो कैसे होता है? असंयम परिहरणार्थम संदेह विनाशनार्थम च। असंयम का परिहार करने के लिए और संदेह का निवारण करने के लिए जब आहारक रिद्धि के धारक छठे गुण स्थान मुनि के आहारक शरीर नाम कर्म का उदय होता है तब ये आहारक शरीर प्रकट होता है। ये आपने एक बात जान ली। अब समझो कि छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराजों को प्रकट होता है, सातवें गुण स्थान में इस आहारक का बंद करते हैं और आहारक रिद्धि का उदय कार्य छठे गुण स्थान में होता है। तो ये शरीर औदारिक और वैक्रिक शरीर की तरह से जीवन भर नहीं रहता, किंतु जिनको आहारक रिद्धि प्राप्त है ऐसे प्रमत्त मुनि अपने प्रयोजन बस उसको उत्पन्न किया करते हैं। तो इसके सिवाय मुनियों के मुख्यतया दो प्रयोजन बताए हैं। भाई मुनियों के पास और कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं, किसी इच्छा से किसी विद्या को किसी रिद्धि को प्रकट करें। दो प्रयोजन रहते हैं, असंयम का परिहार करने के लिए कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का किसी जीव का घात ना होने पाए, किसी प्रकार का असंयम ना उत्पन्न होने पाए, उसका परिहार करने के लिए माने अपने संयम को शुद्ध बनाने के लिए, और संदेह का निवारण करने के लिए। तो जब उनके मन के अंदर तीव्र एक इच्छा जागृत होती है, हारक वृद्धि हो गई है और तीर्थों की वंदना के लिए, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए, या फिर कोई सूक्ष्म शंका उनके मन के अंदर आ गई और उसका निवारण नहीं हो रहा है, तो केवली श्रुत केवली के पादमूल में जाकर के उस अपनी सूक्ष्म शंका का निवारण करने के लिए उनके पास चले जाते हैं। तो कैसे चले जाते हैं? वो इस औदारिक शरीर से नहीं जाते, उनके दाहिने कंधे से एक हाथ का आहारक पुतला निकलता है, उसको कहते हैं आहारक शरीर। जिनके रिद्धि होती है उन्हीं के निकलेगा, और वैक्रियक रिद्धि, विक्रिया रिद्धि और आहारक रिद्धि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जिनके आहारक रिद्धि होगी तो आहारक ही होगी। तो आहारक रिद्धि जिनको हुई है तो वे चाहेंगे तो अपने ध्यान आदि के बल पर उस पुतले को अपने शरीर से निकाल सकते हैं, और वो पुतला जाएगा चैत्यालयों की वंदना कराएगा, या उनके मन में शंका है तो केवली के पादमूल में जाकर के अपने शंका का निवारण भी करके आके और पुनः उस शरीर में औदारिक शरीर में आके समाविष्ट हो जाएगा। ये आहारक शरीर की पहचान बताई गई है, कैसे छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज के ही आहारक शरीर प्रकट होता है, वही अपने असंयम के परिहार के लिए या संदेह को दूर करने के लिए या चैत्यालयों की अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए अपने इस शरीर को प्रकट करते हैं। तो भव्यात्माओं, ये आपको गोमठ सार जीव कांड के अंदर योग मार्गना के अंदर आपको बताया गया है। अब आपको जानना यह है पंचम काल में आहारक शरीर नहीं होता, यानी आहारक रिद्धि किसी मुनिराज को नहीं होती है। सभी मुनिराजों को भी अभी औदारिक शरीर ही है, विशेष तपस्या कर लें तो छठे सातवें गुण स्थान में रहते हैं। कई प्रकार के आजकल लोग आ करके प्रश्न करते हैं, महाराज फलाने मुनि को कौन सा गुण स्थान था, कैसे क्या? तो आपको जानना है पंचम काल में रिद्धियां नहीं होती हैं, तपस्या की शक्ति है लेकिन आज रिद्धि नहीं प्रकट होती है, और छठे सातवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनिराज रहते हैं। द्रव्य लिंग तो उनका देखने के लिए कि भाई इस द्रव्य लिंग के अलावा इन्हें वस्त्र को उतारने के करके दिगंबर वेश धारण किए बिना मुनि अवस्था प्रकट नहीं होती, वो उसी में भावलिंग होता है। भावलिंग माने सच्चे मुनिराज तो भव्यात्माओं, आज भी पंचम काल में सच्चे मुनिराज हैं, पंचम काल के अंत तक भी रहेंगे, ये बात अपने को जानना है। और आहारक रिद्धि या विक्रिया रिद्धि आज के काल में नहीं होती है। इस प्रकार से हमने ये गोमठ सार जीव कांड सार नाम के ग्रंथ का आज स्वाध्याय किया। पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने परम उपकार किया कि नेमी चंद्राचार्य के द्वारा रचित लगभग 750 गाथाओं में से केवल थोड़ी सी गाथाएं, हमें 173 गाथाएं छांट करके दिया है कि आप इसको पढ़ लेंगे तो समझो कि गोमठ सार का पूरा सार जान जाएंगे। मक्खन निकाल करके कोई दे दे तो मक्खन जरूर खा लेना चाहिए, मक्खन मीठा होता है। ऐसे ही मक्खन निकाल करके शास्त्रों का हमें पूज्य माता ने दिया है, उसी का मैं आपको स्वाध्याय करा रही हूँ। तो योग मार्गणा में आज आपने आहारक का योग के बारे में जाना है। अब हम आगे चलते हैं।